ओम शांति। 12 जनवरी 2020, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखानी है। जैसे ब्रह्मा बाप का नंबर वन प्यार मुरली से रहा, जिससे मुरलीधर बना, तो जिससे ब्रह्मा बाबा का प्यार था और अभी भी है, उससे सदा प्यार दिखाई दे। हर मुरली को बहुत प्यार से पढ़कर उसका स्वरूप बनना है। तो ये आज हमारा विशेष होमवर्क है। तो इसके सार हिसाब से हम लेंगे कि हर मुरली को बहुत प्यार से पढ़कर उसका स्वरूप बनना है। कैसे मुरली को प्यार से पढ़ना है और उसका स्वरूप बनना है। तो इस चर्चा में आज हम तीन भाग में चर्चा करेंगे। पहले है ज्ञान, उसके बाद है मुरली, और उसके बाद कैसे स्वरूप बनना। तो ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कहा जाता है ज्ञान माना नॉलेज। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, मतलब ज्ञान प्रकाश है, वो प्रकाश जिससे अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त किया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर या नॉलेज इज माइट, यानी कि ज्ञान शक्ति है। ज्ञान अपने में खुद शक्ति भी है, तथा उस शक्ति का उपयोग करके हम अनेक अन्य सिद्धियां या शक्तियां भी प्राप्त कर सकते हैं। गीता में अनेक प्रकार के योग का वर्णन है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, भक्ति योग, सांख्य योग, विषाद योग इत्यादि अनेक योग का वर्णन है। परंतु इन सब योग में ज्ञान योग को ही प्रमुख माना गया है। परमपिता शिव परमात्मा की प्रवेशता जब ब्रह्मा तन में हुई तो उन्होंने पहले कौन से वाक्य उच्चारण किए? निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। यानी कि मैं आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं और प्रकाश स्वरूप। बाबा ने भी हम बच्चों को, जब से हम ब्राह्मण बने हैं, तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम पतित से पावन या मनुष्य से देवता बन सके। इसके अतिरिक्त ज्ञान को लेके बाबा ने मूल्यों में अनेक तरह के शब्दों या वाक्यों का प्रयोग किया है, जैसे कि ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान धन है, ज्ञान तलवार है, संजीवनी बूटी इत्यादि इत्यादि, दूध अच्छा दूध भी है इत्यादि बहुत सारी बातें की है। इसके अतिरिक्त कुछ वाक्य भी मूल्य में आते रहते हैं, जैसे ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इसके अतिरिक्त हमारे ब्राह्मण जीवन में चार सब्जेक्ट है, एक है ज्ञान योग धारणा सेवा। तो इन चारों सब्जेक्ट में ज्ञान को पहला स्थान दिया गया है। इसका क्या कारण है? क्योंकि ज्ञान ही वो आधार है जिस पे आधारित होकर हम अन्य सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा ज्ञान यथार्थ नहीं होगा तो हम सही या यथार्थ योग नहीं लगा सकते, और अगर हमारा ज्ञान और योग यथार्थ नहीं होगा तो फिर दिव्य गुणों की धारणा सहज नहीं होगी, और दिव्य गुणों की धारणा अगर सहज नहीं हुई या दिव्य गुण मूर्त बन के जो हम सेवा नहीं करेंगे तो वो सेवा भी यथार्थ नहीं होगी। तो ये थी ज्ञान की महिमा। अब हम मुरली पे आते हैं। ब्राह्मण जीवन में मुरली का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि हम इस ब्राह्मण परिवार में दो तरह के ब्राह्मण होते हैं, एक होते हैं सच्चे ब्राह्मण या पक्के ब्राह्मण, और दूसरे होते हैं कच्चे ब्राह्मण या नामधारी ब्राह्मण। या इसको हम दूसरे तरह से भी ले सकते हैं कि दो तरह के ब्राह्मण, एक जो सतयुग में आएंगे और दूसरे जो त्रेतायुग में आएंगे, त्रेता में दोनों। तो फिर इनका डिफरेंस क्या है, या फिर सतयुग में आने वाले ब्राह्मण के लिए क्या कंडीशंस है या क्या शर्त है? तो इसके लिए चार प्रकार की शर्तें बताई गई है। पहला है ब्रह्म ज्ञान यानी कि मुरली, दूसरा है ब्रह्म योग यानी कि अमृत वेला, तीसरा है ब्रह्म भोजन यानी कि खान पान की शुद्धता, और चौथा है ब्रह्मचर्य। तो इसके आधार पे एक सच्चा ब्राह्मण कभी भी मुरली को मिस नहीं कर सकता। आमतौर पे कोई भी ब्राह्मण मिनिमम एक बार दिन में मुरली सुनता या पढ़ ही लेता है, मगर हमें यह सोचना है क्या सिर्फ एक बार मुरली पढ़ना या सुनना काफी है। विशेष तौर पे आज जो हमें होमवर्क दिया गया है कि मुरली को प्यार से पढ़ना है और उसका स्वरूप भी बनना है, तो क्या केवल एक बार मुरली पढ़ने से या सुनने से हम उसका स्वरूप बन जाएंगे? क्या लगता है? नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ मुरली को पढ़ना या सुनना नहीं है, उसके साथ और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर हमें स्वरूप बनना है। तो इसके लिए हम मुरली के साथ क्या करेंगे, इसके लिए कई बार क्लासेस में चर्चा की गई है। इसको आसानी से समझने के लिए हम मुरली के अंग्रेजी अक्षरों को MURLI, इनको एक फुल फॉर्म के रूप में समझ लेते हैं जिससे हम इजीली उसे समझ सकें। तो इसमें पहला जो एम आता है उसका मतलब है मनन चिंतन। मनन चिंतन ही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मतलब मुरली को धारण करने के लिए। मनन चिंतन माना विचार सागर मंथन। मुरली में जो भी ज्ञान रत्न या ज्ञान बिंदु आते हैं, पूरा दिन हमें अपने मन और बुद्धि को उसको भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न युक्तियों से मनन चिंतन में बिजी रखना है। कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा एक शब्द कि उगाड़ना। तो उसी उगाड़ना मतलब जैसे गाय भोजन करने के बाद उसे उगाड़ती रहती है जिससे वो अच्छी तरह हजम हो जाए या हाँ तो उसके शरीर में समा जाए, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों को भी सिर्फ मुरली को पढ़ना या सुनना नहीं है, बाकी पूरे दिन हमारे मन बुद्धि को उसको उगाड़ने में बिजी रखना है जिससे वो अच्छी तरह हमारे मन बुद्धि में समा जाए। दूसरा है यू। यू मतलब अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो हमें मुरली को केवल पढ़ना या सुनना ही नहीं है, उसको समझना है। उसमें जो सूक्ष्म बातें दिए जाते हैं, उसमें जो गुह्यतम रहस्य बताए जाते हैं, उनको समझने का प्रयत्न करना है। उसके बाद आता है आर। आर माना रियलाइजेशन। रियलाइजेशन माना अनुभव करना। तो हमें सिर्फ मुरली को पढ़ना या सुनना ही नहीं है, उसके बिंदुओं को प्रयोग में लाना है। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि बच्चे प्रयोगी बनो। तो उनको सिर्फ सुनना ही नहीं है, उन्हें डे टू डे लाइफ में छोटी बड़ी घटना में उनका प्रयोग करना है और उससे अनुभवी बनना है। उसके बाद आता है एल। एल मतलब लर्निंग। लर्निंग मतलब हमें सिर्फ सुनना है और समझना ही नहीं है, उससे सीखते भी रहना है। और लास्ट में आता है आई। आई मतलब इम्बाइब करना। इम्बाइब करना मतलब धारण करना। तो हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसे अपने आत्मा में मन बुद्धि में उसे धारण कर लेना। तो ये थी मुरली की पांच बातें जिसमें हमें हमारे मन बुद्धि को हमेशा बिजी रखना है। अब एक प्रश्न आता है कि मुरली को हमें दिन में कितने बार पढ़ना चाहिए? इसके लिए क्या फॉर्मूला या क्या बताया गया कहीं पे? तो इस संदर्भ में जानकी दादी के जीवन में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार उन्होंने ब्रह्मा बाबा से पूछा था कि बाबा मैं तो इतने देर से आई, सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, तो मैं क्या करूं जिससे मैं उनके समान या उनसे आगे जा पाऊं? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि बच्ची 12 बार मुरली पढ़ो। तो फिर जानकी दादी ने शायद 12 तो नहीं और भी ज्यादा ही पढ़ा था, 12 या 15 24 21 जो भी है, मतलब उससे कहीं ज्यादा पढ़ा था। हाँ तो वही बात है, जब जानकी दादी ने तब पूछा था तब बाबा ने कहा था कि 12 बार पढ़ना है, तो हम कौन कब आए पता ही है, तो हमें कितने बार मुरली पढ़ना चाहिए? तो इस हिसाब से सुनने से तो कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको जानकी दादी को साइड में रख देते हैं क्योंकि वो हाई क्वालिटी की आत्मा है। हम वो तो है, अभी हमें कितना बार पढ़ना चाहिए मतलब उसके बाद क्या करेंगे हो गया, कितने बार पढ़ना चाहिए दिन में, इसका क्या फॉर्मूला है यहां पे पूछा जा रहा है। पढ़ के क्या करना वो अलग है, अभी कितना बार पढ़ना है, नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो सकता है? अच्छा जैसे यहां कितने टाइम्स पूछा जा रहा है? हाँ, तो यहां पे हम आज की चर्चा में इसे मिनिमम 3 बार लिखेंगे। मिनिमम मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, मगर मिनिमम 3 बार। तो यहां पे ये प्रश्न हो ही सकता है कि 2 बार क्यों नहीं, क्योंकि 1 बार तो सभी पढ़ते हैं। तो मूली हमारे शरीर का भोजन है, तो आमतौर पर हर ब्राह्मण अपने शरीर को 3 बार तो भोजन देता ही है। हाँ सॉरी, मन का भोजन है सही। तो उसके साथ बैलेंस रखते हुए सिंस हम अपने शरीर को 3 बार भोजन देते ही हैं, तो हमें अपनी आत्मा का भोजन जो मूल्य है वो भी मिनिमम 3 बार देना ही चाहिए, एक सुबह, एक रात को सोने से पहले और एक दिन में कभी। तो ये 3 बार देना चाहिए हमें। वो तो ये तो कुछ भी कर सकता है, उसमें तो पूरा छूट दिया है बाबा ने। अच्छा हाँ, तो अभी मुरली का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मुरली हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। मुरली वो लाठी या बैसाखी है जिसके सहारे हर ब्राह्मण आत्मा 7 दिन के कोर्स होने के बाद से जिसे पकड़ के अपने ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ती है। मुरली भगवान के साथ हमारे संवाद का एक माध्यम है। शायद ही हम में से यहां ऐसा कोई भी ब्राह्मण होगा जिसने ऐसा अनुभव नहीं किया हो कि हमने बाबा से कोई प्रश्न पूछा हो और उसका उत्तर बाबा ने मुरली में हमें ना दिया हो। तो ये सब जानते हुए भी कहीं ना कहीं वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मुरली की इंपॉर्टेंस यानी महत्व घटता जा रहा है। यज्ञ के शुरुआती दिनों में जिस प्रकार मुरली का आकर्षण था, तड़प था, या तब की आत्माओं के लिए मुरली के प्रति जो लगाव था या क्रेज था, वो जैसे जैसे यज्ञ का विस्तार हुआ है या सेवाओं का विस्तार हुआ है वो कहीं ना कहीं घट गया है। इसके लिए बहुत तरीके भी निकाले गए जिससे ये ना घटे। जैसे पहले मुरली तो नॉर्मल आता था, उसके बाद आजकल उसमें सार भी दिए जाते हैं, स्लोगन भी दिया जाता है, वरदान भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल में भी अनेक प्रकार के मुरली उपलब्ध है, शॉर्ट, लॉन्ग, पिक्चर वाले, वीडियो, एनिमेटेड, बहुत तरह, जिससे उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ब्राह्मण जीवन में मुरली को महत्व घटता जा रहा है, या उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो ऐसी कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे जिससे मुरली के प्रति हमारा प्यार बढ़े और मुरली सुनते वक्त हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो। कई आत्मा ऐसी समझती है कि मुरली तो अब रिवाइज हो रही है, इसमें नया कुछ है नहीं, हमने सब सुन ही लिया, सीख लिया। और इसी सोच के कारण ही जब हम मुरली सुनते हैं तो वहां हमारी मन बुद्धि भटक जाती है। तो इसका क्या करें, इसके बारे में हम अभी कुछ चर्चा करेंगे कि मुरली सुनते वक्त, सुनने के बाद का तो हमने चर्चा कर लिया क्या करना है पूरे दिन, सुनते वक्त मन बुद्धि को कैसे एकाग्र करें या मुरली को प्यार से सुने। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये तो पता ही, आत्मा बन के सुनो, मगर हम आत्मा बन नहीं पाते, यही तो प्रैक्टिकली क्या करना है ये तो हमें पता ही है। हमें आत्मा बन के सुनना है, फिर भी बुद्धि क्यों भटक जाती है? ये तो पता ही है, परमात्मा मुरली सुना रहे, आत्मा बन के सुनना है, ये तो बेसिक कंडीशन है। परमधाम वो स्टेज को हम छोड़ भी दे, अगर हम इतना भी रखे कि आत्मा परमात्मा के ही, वो भी काफी है, मगर यहां पे बुद्धि क्यों नहीं टिकती है, यहीं पे हमें थोड़ा चर्चा करना है कि क्या करें जिससे हम टिक के बैठ पाए या परमधाम में टिक पाए। हम नहीं टिक पा रहे इसलिए मुरली का महत्व घट गया, इसलिए हमें वही थोड़ा चर्चा करेंगे कैसे हम टिक पाए। तो फिर इसमें कुछ बातें हम लेंगे। पहला लेंगे 2W। कुछ दिन पहले यहां पे चर्चा हुई कि विचार सागर मंथन करने के लिए 5W and 1H या 5 Wives 1 Husband का एक फॉर्मूला बताया गया था। उनमें से हम 2W लेंगे, पहला है हु और दूसरा है वाई। तो मुरली के प्रति प्यार जगाना है तो सबसे पहले इस चीज को अच्छे से हमें समझना है कि ये मुरली कौन चला रहा है। हु मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति के बोल नहीं है, ये है परमपिता परमात्मा, ईश्वर भगवान। तो इस चीज को हम अगर बहुत अच्छे से समझेंगे और मन बुद्धि को समझाएंगे तो फिर हमारा मुरली के प्रति प्यार बढ़ेगा और हमारी मन बुद्धि उतनी नहीं भटकेगी। और अगर इससे भी मन बुद्धि तृप्त नहीं हो रही है तो फिर दूसरा W हमें लेना है कि वाई। मुरली बाबा सिर्फ हम बच्चों की भलाई के लिए चलाते हैं, इसमें उनका निजी स्वार्थ है नहीं। बाबा स्वर्ग की रचना हम बच्चों के सुख शांति के लिए कर रहे हैं, वो तो वहां पे रहेंगे नहीं। तो इन दो चीजों को हमें अच्छे से समझ के मुरली सुनने से पहले मन बुद्धि को समझाना है कि ये कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है, मतलब इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या है। ये बाबा मुरली ये सिर्फ मेरी भलाई के लिए ही समझ रहे। तो अगर हम इन दो बातों को अच्छे से समझेंगे या मन बुद्धि को समझाएंगे तो हमारी मन बुद्धि उतनी नहीं भटकेगी। दूसरा पॉइंट हम लेंगे पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब है साधारण भाषा में कि हमें जब भी हम मुरली सुने तो हमें यह ध्यान रखना है कि वो मुरली बाबा ने सिर्फ मेरे लिए चलाई है, इधर उधर क्या हो रहा है या किसके लिए उससे हमें मतलब नहीं, सिर्फ मेरे लिए। उसका हर एक वाक्य हर एक शब्द मेरे लिए ही है। मगर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि मुरली में हर वर्ग हर संबंध हर तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ रहता है। जैसे कि और जैसे ही हमारे मन बुद्धि में ये टेंडेंसी है कि जैसे ही कुछ आता है, जैसे हम कुमार है कुछ अधर कुमार को लेके बोल रहा है तो मन बुद्धि कहेगी ये तो उनके लिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। या हम कुमार है कुछ कुमारी के लिए या किसी भी संबंध में आप जिस रोल में उससे अलग किसी रोल के बारे में जब कोई भी शब्द आता है तो मन बुद्धि समझता है इससे मुझे क्या मतलब, ये तो बाबा ने दूसरों के लिए बोला। तो ये हमें नहीं करना है। मगर हम ये कैसे करेंगे क्योंकि ये भी तो फैक्ट है। तो इसके लिए हमें कुछ नए थॉट्स डेवलप करने हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे कि हम कुमार हैं और कुछ कुमारी माता या अदर कुमार जुगल किसी के लिए भी कुछ बोला गया है, तब हमें पहले समझना है कि बाबा ने ये मुझे ही बोला। तब मन बुद्धि से प्रश्न आएगा क्यों, तो उससे हमें मन बुद्धि को समझाना है। हाँ यही है कि शायद हम इस जन्म में मर, अगले जन्म का क्या, पिछले जन्मों का क्या, पिछले जन्म में तो हमने अलग 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 तरह के पार्ट निभाए, उनके संस्कारों का क्या हुआ, वो तो हमारे अंदर रह गया, वो क्या खत्म हो गया। तो शायद बाबा उन संस्कारों के ऊपर काम करने के लिए बाबा मुझे ऐसा समझा रहे। दूसरा है जैसे कुछ समर्पित लोगों के लिए कहते हैं तो जो नॉन समर्पित है वो समझते हैं कि हमारे लिए क्या, ये तो समर्पित लोगों के लिए। तब हमें ये नहीं समझना है कि वो हम समर्पित नहीं है, जब से हम बाबा के बन गए हैं तब से हम समर्पित हो गए। तो इसलिए हमें समझ लेना है कि ये पॉइंट भी मेरे लिए। फिर बाबा कहते हैं कभी जैसे मधुबन वाले शोकेश में है, तो ऐसे ये नहीं समझना कि मधुबन वाले शोकेश में, हर ब्राह्मण आत्मा जहां भी है ऑफिस में घर में सेवा केंद्र वो हमेशा ही शोकेश में रहती है, आसपास वालों की नजर चाहे अनचाहे उस पर रहती है, वो बोले ना बोले। तो इस तरफ फिर जैसे और भी एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे बाबा अब एक मूल्य में कभी सिर्फ किसी जोन की बात करते हैं, वहां पे कुछ नहीं रहता, बाबा ने कहा अच्छी सेवा की उमंग उत्साह अच्छा रहा। तो यहां पे हम क्या करें, यहां पे हमें समझ लेना है कि बाबा ने इससे मुझे सीख दिए, बच्चे तुम भी दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाओ जैसे मैं इनका बढ़ा रहा हूं। इस तरह माना कि जो भी पॉइंट है पहले तो मन बुद्धि को बोल देना है कि ये पॉइंट मेरे लिए ही है, फिर उसका लॉजिक खुद ही तैयार कर लेना, मन बुद्धि को बोलो तुम समझ लो ये क्यों है तुम्हारे लिए। तो इस तरह अगर हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे तो हमारी मन बुद्धि कम भटकेगी। इसके अलावा और एक दो पॉइंट है, जैसे कि बाबा है रत्नागर सौदा करने आए, तो हम मन बुद्धि को एकाग्र करें कि बाबा ज्ञान रत्नों का सौदा करने आए हैं, एक एक रत्न लाखों करोड़ों का है, तो इसलिए हमें इतना अटेंशन से बैठना है कि कोई भी रत्न मिस ना हो जाए। फिर हम कहते हैं जैसे कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, तो इस इनकम चीज शब्द को भी हमें ध्यान में रखना है। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम मुरली एक घंटा सुन रहे तो हमारा समय नष्ट हो रहा है या हम ये छोड़ के और कहीं चला जाए। मुरली सुनना मतलब पढ़ना, और भगवान के वाक्य है कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर मैं मुरली एकाग्र होकर सुन रही हूं तो उसमें मेरा समय नष्ट नहीं हो रहा, वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। और आखिरी में हम एक चीज कर सकते हैं, वो है फीडबैक या तो एक रिपोर्ट, मतलब जो भी हमने मुरली सुना उस पे बाबा को एक रिपोर्ट दे दे कि बाबा मैंने तो अपने बहुत दिमाग मन बुद्धि एकाग्र करके सुना मगर फिर भी किसी तरह मैं आपका ये पॉइंट मुझे लगा मेरे लिए है नहीं। जो भी आपने किया वो बाबा को बता दे, या तो बाबा को बताए बाबा मैं तो ज्ञान रत्न लेने के लिए बैठा था, मैंने सोचा था बहुत हाई हाई वैल्यू के रत्न मिलेंगे मगर आज आपने बहुत कम रत्न दिए तो कल ज्यादा देना, यानी कि आपने जो भी एनालिसिस किया है वो बाबा को बता दो, एक रिपोर्ट दे दो, या मेरी इनकम कम हुई या कुछ भी, मतलब जो भी आपने मन बुद्धि को एकाग्र किया इतना समय दिया उसका एक फीडबैक रिपोर्ट कि बाबा आपने मुरली ऐसे चलाई या तो बाबा बहुत अच्छी चलाए, कुछ भी बाबा का रिपोर्ट दे दो, तो उससे क्या होगा बाबा फिर टेक केयर करेंगे, ठीक है अगर आपने कोई नई पॉइंट समझा तो बाबा समझ लेंगे ठीक है अगले मुरली में इसे कैसे समझाना। तो जो भी है, तो माना कि इस ऐसा एक रिपोर्ट हम दे सकते हैं, तो अगर हम ऐसी चीजें करेंगे तो हमारी मन बुद्धि एकाग्र होगी। तो इस चिंतन के सार के रूप में ही वो जो हमने मुरली का फुल फॉर्म किया था वो तो था कि मुरली सुनने के बाद पूरे दिन क्या करना है, तो इसके सार के हिसाब से हम उसी को एक अलग तरह से फुल फॉर्म बना सकते हैं कि हमें मुरली सुनते वक्त क्या करना है। तो मुरली के अल्फाबेट M, मतलब हमें पहले मन से सुनना है, मन और बुद्धि को एकाग्र करके सुनना है। उसके बाद है यू, यू माना यूजफुल, ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि ये मेरी भलाई के लिए चल रही है मुरली, इसमें मेरा फायदा है और किसी का फायदा नहीं, तो फिर मन बुद्धि कम भटकेगी। आर मतलब बाबा ज्ञान रत्नों की वर्षा करने आए हैं और कोई भी रत्न मिस नहीं होना चाहिए। एल मतलब लव, प्यार से सुनना है, जो कि आज के हमारे विशेष होमवर्क भी है कि मुरली को बड़े प्यार से सुनना है। तो इसके लिए हम कुछ भी सोच सकते हैं, या तो हमारे प्रियतम का लव लेटर या एनीथिंग जो भी हमें पता है, या जो हम मेरे लिए इंपॉर्टेंट कोई भी पॉइंट लेके जिससे हम उसे प्यार से पढ़े। और आई मतलब ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम मुरली को प्यार से पढ़ पाएंगे, एकाग्रता से पढ़ पाएंगे और मन बुद्धि उतनी नहीं भटकेगी जितनी भटकती है। तो ये तो हो गया मुरली का पॉइंट। अब है सबसे खतरनाक पॉइंट, स्वरूप बनना। क्योंकि स्वरूप बनना तो बहुत हायर चीज है और बहुत बड़े डिस्कशन भी चीज है, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ आ जाता है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो जो भी, तो फिर भी हम इसकी कुछ बातें लेंगे। तो पहले हमें सोचना है कि स्वरूप कैसे बनते हैं, मतलब हम किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा हम स्वरूप बने, हम किसी धारणा पे या किसी भी गुण पे काम कर रहे हैं, कैसे पता चल गया, इसका क्या कोई टाइम फ्रेम है कि हाँ मैंने एक साल कर लिया तो मैं स्वरूप बन गया, या इसका क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स है कि हाँ मैंने 3 विघ्न या पेपर दे दिए, तो इसका क्या ऐसा कोई मेंशन है किसी मुरली में, कहीं शायद ऐसा मेंशन है नहीं है, और ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जैसे। तो फिर कैसे पता चलेगा हमें कि हम स्वरूप बन रहे, या कैसे बने, या तो कैसे पता चलेगा, इसमें 3 प्रश्न है, कैसे बनेंगे, कैसे पता चलेगा, और हमें क्यों बनना है ये भी सोचना है, हमें स्वरूप बनने की क्या जरूरत है, इस 3 शब्दों का हमें आंसर ढूंढना है। तो फिर इसकी गुत्थी थोड़ी सी सुलझेगी, ऐसे तो बहुत बड़ा चीज है वो, बहुत इंटरनल चीज है, बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना है, बहुत डीप बात है इसमें, फिर भी हम लेंगे कुछ चर्चा करेंगे अभी। तो पहला है हम स्वरूप कैसे बनते हैं, या स्वरूप बनने का पथ क्या है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मुरली के साथ जो जो हमें करना है, तो जब हम मुरली को समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, अनुभव करके जो धारण करते हैं, उसके बाद है कि उसको हमें प्रैक्टिकल जीवन में या जब भी पेपर आता है उसे अप्लाई करना है। तो वो जो मुरली से हमने जो भी धारण किया उसके बाद हमें पहले अप्लाई करना है, जब भी पेपर आएगी, परिस्थिति आएगी, उसके बाद आइदर हम पास होंगे या फेल होंगे। फेल होने से क्या करना है, वापस घूम के वहीं चला जाना, जो हमने किया वो काफी नहीं है, हमारा मनन चिंतन, हमारा सीखना, हमारा समझना वो काफी नहीं है, तो फिर से शुरू करो, फिर से समझो क्या गलती और उस पर काम करो, और अगर हम पास हो गए तो आगे बढ़ो ना। तो क्या हम स्वरूप बन गए, आगे तो बढ़ना ही है, चाहे ना चाहे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो नेक्स्ट पेपर के लिए इंतजार करो, या तो खुद अपना पेपर को पैमाना बढ़ा दो, या तो ड्रामा के लिए वेट करो कि इस पथ पे चलते चलते हम स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, कुछ भी मतलब, या तो खुद ले लो पेपर को खींच के जबरदस्ती, या तो वेट करो ड्रामा या समय लाए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मगर प्रश्न यही है फिर हमें कैसे पता चलेगा कितने दिन बाद हम स्वरूप बने, क्योंकि ये तो एक जर्नी है लंबा। इसको अभी साइड में रख के हम दूसरी बात सोचेंगे कि स्वरूप क्यों बनना है हमें, या क्यों बनना है, इसका क्या उत्तर है, कुछ बताइए आप। स्वरूप बनने की जरूरत क्या, हम तो चल रहे ज्ञान योग में, इसके स्वरूप बनने का अलग से क्या, नहीं बनने से क्या होगा, मतलब ठीक है जीवन मुक्त एक अवस्था, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल क्या बेनिफिट है, मतलब जीवन वो तो है ही जो है, अबे कर्माती जो 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 टर्म्स है वो तो हमें पता है, प्रैक्टिकल क्या बेनिफिट है, ये भी सही है। ये एक प्रैक्टिकल शब्द है ऑटोमेटिक। ये भी है तो हाँ, तो एग्जैक्ट जो पॉइंट में सोचा था वो है ये ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब हम मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा ने मुरली में कहा है बच्चे मेहनत मत करो। बाबा कहते हैं बच्चों की मेहनत देख के बाबा को तरस आता है। तो स्वरूप बनना मतलब ऑटोमेटिक, या तो स्वतः स्वरूप, वहां से रूप हटा के उसको स्वतः बना देना, स्वतः मतलब ऑटोमेटिक चले, मुझे कुछ करना ना पड़े। अगर हम गुणों में ज्ञान में अच्छे हैं तो ज्ञान के पॉइंट ऑटोमेटिक हमें आ जाए, हमें सोचना ना पड़े, हम ऑटोमेटिक योगयुक्त है, बाबा के साथ हमेशा कंबाइन रहे, हमारे अंदर धारणा के बारे में हमें सोचना ना पड़े, हर परिस्थिति में हम ऐसे धारणा मूड बन जाए हर परिस्थिति में हमारी स्थिति एक ही रहे, और सेवाओं के बारे में भी हमें ना सोचना पड़े, हमेशा ही सेवा होती रहे। तो इसलिए स्वरूप बनने का प्रैक्टिकल बेनिफिट है कि हम मेहनत से छूट जाएंगे। ये जो बार बार हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, जब नीचे होती है हमें खराब लगता है, फिर हमें फिर से वही मेहनत करना पड़े, तो ये कब तक करेंगे? तो इससे छूटने के लिए करना है, ये हो गया। और है अब वो जो प्रश्न था कि कैसे पता चलेगा, उसका भी उत्तर यहीं से हमें पता चलेगा कि जब से हमें लगे कि अब हमें इस पर्टिकुलर चीज में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इसका मतलब हम स्वरूप बन गए। तो ये इस चीज से हम उसको किसी दिन, बाकी तो वो एक पथ है, क्योंकि हम बन गए इतना काफी नहीं, वो परिस्थिति पर भी निर्भर करेगा। मेरा शारीरिक कर्म भोग आया, मैं स्वरूप बन गया, मगर प्राकृतिक आपदा उसका क्या, वो तो मैंने फेस नहीं किया, दोनों एक साथ आ गया उसका क्या? तो वो तो एक रहेगा कि स्वरूप बने हैं कि नहीं, उसका पेपर तो आता ही रहेगा, मगर हमारे एंगल से जब चीजें स्वतः होने लगे, ऑटोमेटिक होने लगे, मेहनत ना करना पड़े, इसका मतलब वो आत्मा उस चीज का स्वरूप बन गया। अब यहां पे एक कहानी हम सुनेंगे कि एक काफिला एक रेगिस्तान से गुजर रहा था, तो वहां पे उन्हें कुछ दिनों के लिए उस रेगिस्तान में रुकना पड़ा। तो सबने अपना अपना टेंट या क्या कहते तंबू लगा के सब वहां रहने लगे। तो उनमें एक अनुभवी व्यक्ति था, वो क्या करता था, रोज अपने तंबू के चार जो क्या है पिलर या खूंटे हैं उनके ऊपर एक भारी हथौड़ा से रोज उस पर मारता रहता था। तो बाकी लोग पूछते थे आप ये क्यों कर रहे हो, हम तो यहां कुछ दिन ही रहेंगे और ये तो हमने बहुत शक्तिशाली रूप में ही लगाया था, आपको ये मेहनत करने की क्या जरूरत। मगर वो सुनता नहीं था, वो रोज उसके ऊपर मारता रहता था। तो एक बार कुछ दिनों बाद एक बहुत ही भयानक या ताकतवर तूफान आया, तो सबके टेंट उड़ गए, सिर्फ उस आदमी का ही टेंट बच गया। तो ये कहानी हम क्यों बताए ये तभी हम समझ जाएंगे। अब जो हम बात कर रहे थे स्वरूप बनने की, तो हमें किन किन चीजों का स्वरूप बनना है बताइए, मतलब स्वरूप का तो अंत नहीं है, मतलब तो किन किन चीजों का हमें बनना पड़ता है बेसिकली, पहले बताइए। हाँ, ओरिजिनलिटी मतलब गुण, आत्मा के जो सात गुण हैं उनके हमें स्वरूप बनने, और हाँ पहले हमें हर गुण का स्वरूप बनना है, फिर हमें हर शक्ति का स्वरूप बनना है, और क्या हो सकता है, हाँ वो भी है, योग के बहुत सारे स्थिति उनका भी स्वरूप बनना है, और ज्ञान के स्वरूप, तो यही है। तो हमें जितने भी है गुण शक्ति और जितने कर्तव्य है, जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा त्रिमूर्ति ब्रह्मा बनो, तो उसमें जो जो कर्तव्य है स्थापना पालना या तो जो भी है, या ऐसे बहुत है, हर बातों का ही हमें स्वरूप बनना है। तो फिर जैसे एक तो है कि स्वरूप का ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, मतलब हम कभी निश्चित नहीं हो सकते कि हम बन गए, क्योंकि उतना बड़ा पेपर शायद नहीं आया या कब आएगा हमें पता नहीं या अंत में आएगा। दूसरा है कि हमें इतने चीजों का स्वरूप भी बनना है, तो फिर हमें तो चुनना पड़ता है, क्योंकि किसी भी स्वरूप बनने के लिए तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा दूसरे को छोड़ के। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि हम एक चीज का स्वरूप बन गए तो उसको हमें उसके ओर से ध्यान पूरा नहीं हटा देना है, हम दूसरे पे फोकस कर रहे हैं मगर उसका भी मुझे अटेंशन रखना है कि हाँ इसका पेपर भी आ सकता है या इससे बड़ा पेपर भी आ सकता है। तो ये अटेंशन रखना माना वो हथौड़ा मान। तो जैसे ही हम स्वरूप बनते हैं या एक बन गए दूसरे पे फोकस करते हैं, तब हमें जिसका हम बन चुके या हमें लगता है जिसका हम बन चुके हैं उस पे ये हमें फोकस जरूर करना है या उस पे वो हथौड़ा मारते रहना। जिससे कि कभी कोई भयानक माया रूपी का विकराल रूप में जो तूफान आएगा वो हमारे उस स्वरूप रूपी तंबू को उड़ा के ना ले जा सके। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम अभी थोड़ा समय है तो अभी हम एक चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण परिवार में इस स्वरूप के आधार पर कितनी तरह की आत्माएं होती है या उनके साथ हमें उनके प्रति हमारा क्या एनर्जी या कुछ भी होना चाहिए। तो बहुत तरह की आत्माएं हैं स्वरूप के आधार पे। पहला है जो स्वरूप बन गए हैं जैसे हमारी दादियां या और भी वरिष्ठ भाई, तो उनके बारे में तो हमें कुछ सोचना नहीं है, उनसे हमें जितना हो सके सीखना है, उनके बारे में तो सोचना है नहीं, वो तो बन चुके। दूसरी ऐसी कई आत्माएं हैं जो स्वरूप नहीं बने हैं मगर उन्हें लगता है हम स्वरूप बन गए, तो ऐसे में हमारा क्या रोल है? कोई रोल है ऐसे आत्माओं के प्रति? कोई रोल नहीं है। ऐसे में हमें सिर्फ शुभ भावना रखनी हो तो हमें हर आत्मा के प्रति रखनी है और बाबा और ड्रामा पे उन्हें छोड़ देना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तीसरा है कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो बनना ही नहीं चाहते स्वरूप, हमें बनना ही नहीं, हम जो है जितना काफी, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्वरूप बनने में या किसी भी चीज में और आगे जाने में ज्ञान योग में, उनके प्रति हमारा हाँ ये भी हाँ। तो हमारा ये नजरिया था, हमारा उनके प्रति क्या होना चाहिए, हमें कुछ करना है या छोड़ देना है यही? हाँ तो हमें क्या करना क्या है, मतलब उन्हें भी छोड़ देना या क्या करना? शुभ भावना तो हमारे सबके प्रति है तो उसको अलग से हम नहीं बोलेंगे, तो उसमें हमें क्या करना है? या हम ये भी सोच सकते कि छोड़ो कंपटीशन कम हुआ है, जब ये भी सोच सकते हैं तो अलग बात। तो ऐसे में उनमें वहां हमें कुछ नहीं करना है, हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि उनके सामने हम स्वरूप बने और सोचे सिंस हमें लगता है कि वो नहीं बने हैं तो हम ये शुभ आशा रखें कि हाँ हम ऐसा स्वरूप बन जाए जिसे देख के वो भी स्वरूप बनने का प्रयत्न करे या कुछ सीख ले। और इसके अतिरिक्त है जिसमें मेजोरिटी आत्मा आते हैं या जो पुरुषार्थी या उस कैटेगरी में आते हैं जो बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन नहीं पा रहे, जिनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, कुछ दिन के लिए बन गए फिर नीचे आ जाते हैं, जो चलते चलते मूंझ जाते हैं, थक जाते हैं, तो इस कैटेगरी के ऊपर हम अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो स्वरूप कैसे बनना ये तो हम सबको ही पता है, महीन चेकिंग वो है, तभी हम क्यों नहीं बन पा रहे, हम पुरुषार्थ करते हैं फिर स्लो क्यों हो जाते हैं, क्यों मूंझ जाते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसके कुछ कारण है, पहला है आलस्य और अलबेलापन जो मेन कारण है। तो उसके लिए अलबेलापन में दो तरह का होता है, एक होता है कि हम चलता है ये जो है चलता है, हम दूसरे ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं, अरे तो ये भी करता है तो इतना चलता है, अरे बड़े भाई भी इतना करता है, ऐसे करके कि हमें पता है यह श्रीमत में नहीं है फिर भी हम समझ लेते हैं चलता है। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा है, बच्चा चलाओगे तो चिल्लाना पड़ेगा, वो भी बोला है कि चलते चलते तेता में पहुंच जाएंगे। तो जब भी हमारे मन में ऐसे संकल्प आए तब हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि बाबा ने बोला है कि अभी तो मैं चल रहा हूं मगर चलान से मुझे चिल्लाना पड़ेगा, मतलब पश्चाताप करना पड़ेगा, या तो जो बोला चलते चलते तेता में पहुंच जाएंगे या तो मैं सतगुरु, हाँ वो भी है, मतलब तेता में आ जाना मतलब वही है। तो ये पॉइंट्स को हम दिमाग में रख सकते हैं। दूसरा है जो गे गे करते हैं बच्चे, कल कर लेंगे, इसके लिए बाबा ने क्या बोला है, कल कल करते काल आ जाएगा, हाँ। फिर कहा है कि अगर अभी शरीर छोड़ देगा तो आपको क्या पद मिलेगा, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बाबा ने बताए। दूसरा कैटेगरी है एक तो अलबेलापन, दूसरा है कि जो दिल शिकस्त हो गए, जो समझते हम इतने साल से और कब तक करे और कब तक ये पुरुषार्थ करते रहे, उनके लिए बाबा ने क्या कहा है, बहुत गई थोड़ी रही उनको, और अभी तो थोड़ी की भी थोड़ी रही, पहले जब जब बाबा ने कहा था ये आखिरी दिवाली है उस समय तो कहा था तो फिर बहुत जन मूंझ ही गए इतने दिवाली देखते देखते, मगर हाँ तो वो तो है ही वो जो है, मगर आज हमें क्या लगता है, आज हमें क्या लगता है असली में और 20 साल निकल जाएंगे या अंत आ गया है आज, वो इसलिए मैं कह रहा हूं उस समय तो अलग बात थी तब उन्होंने कैसे फेस किया तो अलग है, मगर आज के दिन में हमें सबको पता है कि अंत समय नजदीक है, इसलिए हमें जब भी हम थोड़ा स्लो हमें ये ध्यान रखना है और थोड़ा सा है, मतलब और कितना ये प्रश्न आए तो दिमाग में भर देना कि और थोड़ा सा, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी थोड़ी रही, हाँ। तो इस ऐसे पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना। और एक कैटेगरी है इसमें जो सोचते हैं कि हमको जितना किया हो गया, मतलब तो जितना किया इतना काफी और नहीं बढ़ाना, तो हाँ हाँ, तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा है? हाँ, तो बाबा ने यही कहा है, बच्चे थोड़े में खुश मत हो जाओ, थोड़े में संतुष्ट मत हो जाओ। तो ऐसी कुछ बातों को हमें ध्यान में रखेंगे तो फिर हम पुरुषार्थ में स्लो नहीं होंगे। अब हम पुरुषार्थ में दिल शिकस्त क्यों हो जाते हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि बाबा तो मुरली चलाते रहते, तो उसमें स्टैंडर्ड बढ़ाते रहते हैं। जैसे अभी तो हम ब्राह्मणों का मांगना ही खत्म नहीं हुआ, इच्छाएं खत्म नहीं हुई, और बाबा कहते हैं देना नहीं है लेना है, लेना नहीं है देना है, हमें दाता बनना है दानी बनना है। तो जब हम इस पे पुरुषार्थ करते हैं और हम दाता या दानी बन जाते हैं, तो फिर बाबा मुरली चलाते कि बच्चे दानी नहीं महादानी बनो, तो स्टैंडर्ड थोड़ा उठा देते। फिर हम कोशिश करते कि महादानी बने, तो बाबा बोलते हैं डबल महादानी बनो, जैसे कुछ दिन पहले आया था, त्याग के भाग्य का भी त्याग कर। तो इस तरह बाबा जैसे जैसे स्टैंडर्ड उठाते रहते हैं, या बाबा की एक्सपेक्टेशन इतनी ऊंची रहती है हमसे, तो इसको देख के भी हम कहीं कहीं दिल शिकस्त हो जाते हैं या मून जाते हैं, बाबा और कितना, मैंने तो इतना किया है, मेरे जो क्या है कैपेबिलिटी उससे ज्यादा किया, और कितना करूं। मगर यहां पर हमें यह सोचना है कि इससे प्राप्ति भी कितनी ऊंची है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, हम बच्चे को ऊंचे ते ऊंचा बनाने के लिए आया, हमें सिर्फ मनुष्य से देवता बनाने नहीं आया, नंबर वन देवता बनाना, बाबा का तो यही लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनाना है। इसलिए हमें मूंझना नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि सर्वशक्तिमान बाप का साथ और हाथ है, तो विजय हुई पड़ी। और आज के मुरली में बाबा ने दो तीन शब्द बोले हैं, एक है आधार रूप उद्धार रूप, तो हमें आधार रूप और उद्धार रूप बनना है, स्वयं का भी उद्धार करना है और दूसरों का भी उद्धार करना है। बाबा ने कहा है जो ओटे सो अर्जुन, और अर्जुन माना नंबर वन, तो हमें भी नंबर वन बनना है या अर्जुन बनना है। और बाबा ने बोला है अटल संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो मुख से नहीं मन से। तो आज के पुरुषार्थ का होमवर्क को ध्यान में रखते हुए हम अटल संकल्प करेंगे कि बाबा आज से हम जो भी मुरली सुनेंगे बहुत ही प्यार से सुनेंगे और उसका स्वरूप बन के दिखाएंगे। ओम शांति।